ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों और इन्हें लागू करने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय देवव्रत यादव, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्रा।
श्रोताओं, विभूति मिश्र का आपको नमस्कार। सुर्खियों में आज चर्चा का विषय है भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों और इन्हें लागू करने की तैयारियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं देवव्रत यादव, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। देवव्रत जी, सबसे पहले श्रोता संभवतः ये जानना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की आखिर क्यों जरूरत महसूस हुई है।
नमस्कार सभी को। भारतीय न्याय संहिता की जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि अभी तक जो हमारे कानून थे वो काफी, जो हमारे क्राइम से रिलेटेड कानून सारे अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने, स्टेट्स ने जो है अमेंडमेंट कर रखे थे, तो उसमें तरह तरह की विकृतियां आ गई थी। और उसकी सबसे बड़ी जरूरत यह भी थी कि सबसे पहले 1834 में लॉर्ड मैकाले ने जो इंडियन पिनल कोड 1860 में वो हम लोगों ने इनेक्ट किया था, उसके बाद से वो 1860 से इंडियन पिनल कोड अभी तक चलता चला, हम आज 2024 में आ गए। तो इतने लोगों का ऐसा भी कहना काफी रहा है कि वो लॉर्ड मैकाले ने बहुत परफेक्ट इंडियन पेनल कोड बना दिया था जिसकी वजह से उसमें कभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर उसको इस ढंग से भी देखा जा सकता है कि शायद कभी इतनी जो है इस तरह की चेष्टा नहीं करी गई क्योंकि वो अपराध उस समय के लिए ज्यादा सही थे जो उसमें लिखे हुए थे, बहुत सारे अपराध, और हम लोगों ने इस हमेशा ही पिनल कोड को अमेंडमेंट करते ही चले गए, करते इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए जब तक हम 2024 तक आए। तो इसलिए अब उन सभी को हम लोगों ने अमेंडमेंट सारे एक तरह से स्ट्रीमलाइन करके और अब उनको एक नए ढांचे में भारतीय न्याय संहिता के रूप में BNS 2 के फॉर्म में जो है हमने लागू कर दिया है, इसलिए ज्यादा जरूरत।
भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की क्या क्या तैयारियां हैं?
भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जुलाई के शुरुआत में ही भारतीय न्याय संहिता आ जाएगी। उनके एक स्टेक होल्डर्स में से हम लोग भी एक हैं, तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हम जो है पुलिस वालों को इस चीजों के लिए, पुलिस ऑफिसर्स भी अपने बीच में आपस में भी ट्रेन करते हैं और जहां पे उनको ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा जानकारी चाहिए होती है वहां पर एडवोकेट्स या सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को बुला करके भी उन्होंने जो उनके ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहां पर जो भी उनके क्षेत्रीय रीजनल सेंटर्स ट्रेनिंग सेंटर्स है वहां पर लोगों को तैयार किया गया है, उनको उस फील्ड में एक्सपर्टीज दी गई है और वो लोग और आगे जा जाके छोटे स्तर पर भी जैसे पुलिस स्टेशन जो बिल्कुल सबसे नीचे स्तर पर आ जाता है पुलिस स्टेशन तक में भी इस चीज की ट्रेनिंग दे दी गई। जजेस के ओरिएंटेशन कोर्सेज हो चुके हैं और भी जो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज हैं उनको भी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से उनको भी ट्रेनिंग इसमें दी जा चुकी है। तो लगभग हम पूरी तरह से तैयार हैं, बस सिर्फ हमारे जो सॉफ्टवेयर जो थे वो अपडेट होना रह गए थे, जो मुझे लगता है कि अब तक, क्योंकि अब हम जुलाई में इसको पूरी तरह से लागू करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाई तक वो सारी चीजें पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएंगी।
जी जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो एक खास बिंदु है वो ये है कि राजद्रोह अब अपराध नहीं है बल्कि इसके बजाय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में जो डालने वाले कृत्य हैं उनको अपराध बताया गया है। तो आखिर ये कैसे अलग है और इसकी परिभाषा क्या है?
पहले जो हमारा 124A जो राजद्रोह का सेक्शन था हमारा IPC में, वो पहले काफी वाइड सेक्शन था। मैं डेफिनेशन तो समय की कमी की वजह से उसकी पूरी नहीं पढ़ूंगा, पर उसमें ये था कि आप किसी भी चीज को जो है, किसी भी आप कुछ भी, मतलब XYZ जो भी आप चीज लिखें उसको आप जो है राजद्रोह में डाल सकते थे। अब जो है, अब हम लोगों ने उस चीज को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब हम लोगों ने किसी भी चीज को जो ऐसा चीज लिखी जा रही है, मान लीजिए कि हमने अगर कोई चीज सिर्फ कहीं अपने किसी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दी या कहीं किसी किताब में लिख दिया, तो वो अब राजद्रोह की चीज नहीं है। पहले इन चीजों को, और वो आप इस चीज को भी ध्यान रखें, हमेशा इस चीज से जोड़ के देखें, क्योंकि वो 124A सेडिशन का कानून जो है वो अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ कानून था। तो सेडिशन इसलिए था कि कोई भारतीय ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट जो है रिबेलियन ना कर दे या कोई चीज कहीं पर कर तरह तरह के चिपका के ना चला जाए जिससे कि लोगों के बीच उनके खिलाफ रिबेलियन की भावना जागृत हो, उस चीज को भी खत्म करने के लिए जो है वो उस समय तर्कसंगत था 124A उस समय डाल देना। पर अब हम लोगों ने उस चीज को, अब हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोगों ने जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 में हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को रखा है जिनसे कि भारत को अगर कोई मतलब अलगाववादी शक्तियां अगर दूर करने की कोशिश और वो उस चीज की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमने सेसनिस्ट लोग हैं, सेपरेटिस्ट हैं, इन चीजों को ही सिर्फ उसमें में डाला हुआ है। तो अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गया, वो जैसे पहले वेग वर्डेड और वाइड और ओपन जितने तरह से सेडिशन का कानून था वो अब उतना ओपन कानून नहीं रहे। तो ये हमने इस चीज में बहुत ज्यादा चेंज किया, जो कि बहुत ही अच्छी एक पहल है।
इस न्याय संहिता के अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो आप इसमें क्या क्या देखते हैं?
प्रमुख विशेषताएं इसमें बहुत सारी हैं। मैं सबसे पहले इसमें एक जो विशेषता जो है वो, अब जैसे कि आप वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो जो पेनल कोड्स जो होते हैं, पेनल कोड्स सारे किसी को भी सजा देने का मतलब, सजा हम किसी को जेल में बंद करके या कोई भी सरकार किसी को जेल में बंद करके नहीं रखना चाहती, क्रिमिनल को जो है हमें रिफॉर्म करना है। तो रिफॉर्मेटिव मेजर्स जो है वो हमने इसमें डाले हैं, जैसे कि पहले जो है हम सिर्फ जेल में बंद करने या फाइन के ही प्रावधान थे, अब हमने एक नई चीज लेकर के आई, सामुदायिक सेवा, जो कि विदेशों में बहुत चलती है। और कोर्ट्स जो है कई सारी चीजों में, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स थे, वो बहुत सारे जो केसेस की क्वेश्चनिंग होती थी, जो बहुत छोटे छोटे अपराधों की क्वेश्चनिंग होती थी, जैसे किसी की छोटी सी चीज चोरी हो गई या बहुत सी छोटे माइन्यूट किस्म के जो अपराध थे, उनमें कोर्ट हमेशा से ही कम्युनिटी सर्विस के काम करवा रही थी, जिसमें जो क्रिमिनल होता था उसको कोर्ट बोलती थी कि आप कहीं वृद्धाश्रम में जाके या कहीं आप 10 तरह के पेड़ लगाइए, इस तरह के दिल्ली हाईकोर्ट काफी चीजें ऐसी करता भी रहा। तो वो चीज हमने एक सामुदायिक सेवा को अब एक तरह से हमने इसमें डाला है। और कई ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें आप सिर्फ सामुदायिक सेवा करके, कम्युनिटी सर्विस करके भी आप बाहर आ सकते हैं। राजद्रोह अब कोई अपराध नहीं है, इसके बजाय भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध बना दिया गया है। बीएनएस अभी तक हमारे पास जैसे टेररिस्ट और इन चीजों के लिए भी कोई एक अलग तरह का बिल्कुल खास प्राविधान नहीं था, तो भी अब आतंकवाद और हमने ऑर्गेनाइज क्राइम को भी आपस में जोड़ दिया है। बीएनएस आतंकवाद को अपराध के रूप में जोड़ता है, तो और उसके संगठित अपराध वाली चीजों को भी हमने, जैसे जबरन वसूली, साइबर अपराध जैसे अपराध जो बहुत ज्यादा आजकल आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो उन चीजों को भी हमने इसमें रखा हुआ है। जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिन्हों के आधार पर, और 5 या अधिक व्यक्तियों की जो मॉब लिंचिंग हम जिसको कहते हैं, 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मौत तक की सजा के लिए एक अपराध होगा। तो हमने एक मॉब लिंचिंग का मर्डर में ही, जो अगर 5 लोग या उससे ज्यादा है तो उस सेक्शन में ही हमने नीचे मॉब लिंचिंग के लिए भी ऐड कर दिया है। और इसमें हमने अब जैसे पहले इसमें सुसाइड की भी वो था कि हम सुसाइड जो अटेम्प्ट करता था हम उसको भी क्रिमिनल मान लेते थे, तो अब हमने वहां पर कहीं भी वैसी चीजों का विकृत दिमाग वाले व्यक्ति को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान कर दी है, जो मेंटली इल है उन लोगों को भी हमें, तो उस चीज को हमने अनसाउंड माइंड और उसको ना लिख के हमने मेंटल इलनेस करके, जो कि ग्लोबली काफी एक्सेप्टेड वर्ड है, वो हमने यूज किया है। और इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमने इसमें, जैसे देखें तो हमने एडल्टरी का जो पहले 377 का कानून था तो वो भी हमने इसमें से हटा दिया। ये बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं, पर मेजर सारी विशेषताएं यही हैं।
अभी आपने मॉब लिंचिंग की चर्चा की, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको लेकर के निर्दिष्ट आधार क्या है?
मॉब लिंचिंग के लिए जैसे बहुत सारी घटनाएं मॉब लिंचिंग की आ रही थी सामने, और जब वो मॉब लिंचिंग कभी भी किसी भी के भी द्वारा किसी के खिलाफ हो जा रही थी, जहां पर लोग किसी चोर को भी अगर जो है कोई, मतलब कि आप देखें कि कहीं किसी भी राज्य में ऐसे चोरों को भी जैसे गांव के लोग पकड़ के भी उसको मॉब लिंचिंग कर देते थे, और उसमें किसी का भी जो है कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रहता था, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते थे उसमें कि पहले किसने क्या किया। तो उन सारी चीजों से निपटने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी धारा 103 है उसके पार्ट बी में इस चीज को डाल दिया है कि जब भी 5 या 5 से अधिक लोग एक ही चीज को उद्देश्य में रख के, और उसमें ये भी डाल दिया है कि जब और ध्यान में अगर रखते हैं कि किसी की रेस है, किसी की जाति, धर्म या इन चीजों के आधार को कि कोई कहां का रहने वाला है, वो क्या भाषा बोलता है, या वो किसी एक पर्टिकुलर किसी मत को मानता है, तो उसके आधार पर अगर किसी 5 लोग मिलके इस सिर्फ इन चीजों की वजह से अगर उसकी हत्या कर देते हैं, तो वो अब हम लोगों ने मॉब लिंचिंग के 103 सेक्शन के पार्ट 2 में हम लोगों ने सब सेक्शन में इसको डाल दिया है। तो इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक चीज अब हमारे पास है।
जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर आईपीसी के प्रावधानों को बरकरार रखता है। इसमें जस्टिस वर्मा समिति के कुछ सुझावों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे बलात्कार के अपराध को जेंडर न्यूट्रल बनाना और विवाह में बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं?
बलात्कार को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए अभी जो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे केसेस हैं जहां पर ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू जो लोग हैं, इन लोगों को हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारा प्रोत्साहन दिया है। तो इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अब जजमेंट्स ऐसे हैं कि आप इन सेक्शंस को जो है आप इसमें रख नहीं सकते। जेंडर न्यूट्रल जहां तक बनाने की बात है, तो जेंडर न्यूट्रल इसलिए भी नहीं क्योंकि अननेचुरल ऑफेंसेस के हमारे पास, हमने जो 377 वगैरह, तो वो पहले इस तरह से आप उसमें देख सकते हैं कि वो एक तरह से आप जेंडर न्यूट्रल की तरह से कंसिडर, पर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स हैं जो कि इन चीजों के खिलाफ है, और जेंडर न्यूट्रल रेप में चीज बना देना, इसे बहुत सारी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होगी। इसलिए नंबर एक वो जेंडर न्यूट्रल वाली चीज आना काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरा जो मैरिटल रेप आपने बोला, तो मैरिटल रेप में स्टैंड भारतीय लोगों का काफी ज्यादा क्लियर है कि मैरिटल रेप को हम लोग भारत में कोई इस चीज का ज्यादा कोई कानून इस चीज के लिए नहीं है।
देवव्रत जी, अब भारत इतना बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, पहले से कानून जो है वो चला आ रहा है, तो हालांकि आपने तैयारियों की तो बात की ही है, फिर भी एक व्यवहारिक स्तर पर देखें तो क्या लगता है आपको इस कानून के बारे में?
ये सारी चीजें जो है वो भी मतलब जितनी भी चीज हम लोग अमेंड करके लेकर के आए हैं, इन सारी चीजों की पूरी आप समझे कि पुख्ता तरह से तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मैं भी इन तैयारियों में जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी काफी लोगों को इस बीच इसमें ट्रेनिंग दी, और आप देखें कि तैयारी इसकी जो है काफी समय पहले से ही चल रही है, काफी अब सारा कुछ सारा सिस्टम जो है अपडेटेड हो रखे हैं, और बस जुलाई के बाद से जैसे ही मेरे ख्याल से नई सरकार का गठन होगा तो वो तुरंत ही, क्योंकि अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकते हैं, उसके बाद ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तुरंत ही इसको लाना चाहिए, और क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने इतनी स्टैंडिंग कमिटीज के आप देखें कि रिकमेंडेशंस हैं, इतने एक्सपर्ट लोग इसमें इन्वॉल्व थे, काफी सारे सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जजेस खुद कई लोग जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनको काफी इस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो लोग इन सब में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए जो इतनी चीज करी गई उसमें भी सब हमने पहली बार भारतीय न्याय संहिता बनाई, उसमें फिर हम लोगों ने रिव्यू लिया, कमेटी के जो चीजें थी उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद अब सारी चीज इतना सब कुछ एक्सरसाइज करने के बाद, एक हमंगस एक्सरसाइज करने के बाद, सारे स्टेक होल्डर्स को भी हमने ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष में आप देखें कि इतने सारे राज्य हैं, दूर दूर तक जो है वीसी के द्वारा भी ट्रेनिंग हुई, जिसमें 10-10, 5-5 हजार लोगों ने एक समय पर ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, और सारी व्यवस्थाएं लगभग सारी तय हैं, तो बहुत ही जल्द आप इसको अमल में पाएंगे, बहुत ही जल्द जो है हम लोग इन्हीं धाराओं से जो है प्रभावित होंगे।
जी हाँ जी हाँ, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जो भारतीय न्याय संहिता जो है ये इस तरह के कानून जो है वो और कुछ पहले आने चाहिए थे?
हाँ, भारतीय इस तरह के कानून आप जितना पहले ले आते वो उतना, क्योंकि हमने बहुत लंबा इंतजार किया, 1860 में जो हमारा इंडियन पिनल कोड आया था वो अब आया, उसको हमने अब जाकर के बदला, 2023 में जाकर के हमने एक्ट को पास किया जो कि अब 2024 में जाकर के लागू होगा, तो इन चीजों को कभी हो सकता है इससे पहले कि जो लोग रहे हो, जो नीति बनाने वाले लोग रहे हो, उनके बीच में इतनी जो है मेंटली स्ट्रांग ना रहे हो कि इस डिसीजन को लिया जा सके, या हो सकता है उन लोगों ने कभी इतना रिव्यू ना लिया हो कि इन कानूनों की वजह से क्या दिक्कत आ रही है और क्या अपडेट्स, क्योंकि आप देखें अमेंडमेंट्स इतने थे कि अगर आप इंडियन पिनल कोड उठा के देखेंगे तो लगभग हर सेक्शन के अंदर, सारे सेक्शन में जो है आप देखेंगे किसी राज्य ने अपना उसका अलग वर्जन बना रखा है, किसी राज्य ने अलग वर्जन बना रखा है, तो उसमें परेशानी ये भी होती थी क्योंकि आप देखें कि कोर्ट्स में केसेस भी जब, और वकीलों को भी, और जो मान लीजिए कि अगर किसी ने, अब कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसने अपराध जाके अगर सिक्किम में कर दिया तो उनको ये भी परेशानी होती थी, क्योंकि हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता था कि सिक्किम में बिल्कुल अलग है, पर हाँ अमेंडमेंट्स कुछ ऐसे थे कि जिन चीजों की वजह से कई बार जो कुछ एक लोग जो अपराधी होते थे वो इन वजहों से परेशानियों में पड़ जाते थे, तो उनकी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब के लोग जो हैं, जो अब नीति बनाने वाले लोग हैं, जो अब इस चीज को देख रहे हैं, वो मेंटली काफी स्ट्रांग है, जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि भारतीय न्याय संहिता सबसे पहले लाए, फिर उसमें कुछ कमी लगी तो वो इस तरह से भी इतने भी एक्सेप्टेंस उनके अंदर थी कि उन्होंने उसको वापस लिया, अदरवाइज आप देखें कि कहीं सदन में किसी बिल को वापस लेना एक अपने आप में वैसी चीज काफी जिसको लोग पसंद नहीं करेंगे।
जी हाँ, देवव्रत यादव जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों और इन्हें लागू करने की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अभिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय देवव्रत यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।